السلام علیکم، میں ہوں مختار احمد، ورچوئل یونیورسٹی کے کورس MGT501 کے ساتھ، اور یہ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے بارے میں. اینڈ آئی بلیو ناؤ یو مسٹ ہیو اسٹارٹڈ فیلنگ کمفرٹیبل، کیونکہ آپ کچھ چیزیں جو آپ کے پاس HRM کی بکس ہیں وہاں سے پک کر کے میں آپ کے ساتھ ہر لیکچر میں ڈسکس کرنا شروع کیا میں نے. اور آج ہم لیکچر نمبر 10 کے ساتھ آپ کے ساتھ چند ٹاپکس ڈسکس کرنے کے لیے ہیں. تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں، لیکن ایز یوزول اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلے کو جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا اس کو ساتھ کوریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے پھر آگے چلیں گے. لیکچر نمبر 9 دیٹ واز بیسیکلی آن فنکشنز آف HR ڈپارٹمنٹ جو ہونا چاہیے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی آج کی فنکشن کیا ہے، کن کن ایریاز میں ان کا جو ہے پارٹ پلے کرتے ہیں وہ. اور اس کے لیے ہم نے 5 بیسک فنکشنز کو ڈسکس کیا تھا. وہ کیا تھے؟ ایک ماڈل کی شکل میں ہیومن ریسورس فنکشن کی بات کی تھی. اینڈ وی اسٹارٹڈ وتھ اسٹافنگ. Then it was human resource development. Then it was compensation, safety and health, and employer or labor relationship ki baat ki. Aur phir isi hawale se we try to understand ki within this broader area what different activities the HR department is performing. And as I said earlier, these things are continually changing. Remember that when we were talking about personnel management and shifting from personnel to HRM, how this jo do teen kaam karte shuru mein, like picnic ka bandobast kar liya, health ke bare mein concern show kar liya, chuttiyon ka record rakh liya, now they have shifted to very kind of important other aspects of working within the organization. In 5 areas ko humne detail mein kal discuss karne ki koshish ki thi. اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ناؤ دیز آر مور اسپیسیفک ناؤ ایریا ویئر وی آر اینٹرنگ اینڈ یو مسٹ بی لٹل بٹ کنسرن کہ سو مینی تھنگس ٹوگیدر، بٹ ڈونٹ وری، ول بی ٹچنگ ایچ پوائنٹ اور ایچ ٹاپک ان اے سیپریٹ لیکچر ان ڈیٹیل. اینڈ یو مائٹ ہیو آلسو آبزرو دیٹ ایون ان یور ٹیکسٹ بک اور دا بک یو آر فالوئنگ فار دا دس سبجیکٹ you have the separate chapters for each such topic. تو پھر اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم آہستہ آہستہ اسی طرح شفٹ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو لے کے بھی چلنا ہے. وہ جو شروع سے ہر بات ہر لیکچر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یو ول ناٹ میک اے ڈفرنس انلیس یو پٹ لاٹ آف یور ایفرٹس دیئر، وہ کیا ہے کہ آپ کو آج پھر ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ جو پہلے پڑھیں آنے سے پہلے یا دیکھنے سے پہلے یا اس لیکچر کو سمجھنے سے پہلے سننے سے پہلے اس ٹاپک کو پڑھ لیں کتاب کے اندر، اور پھر جب یہ لیکچر سن لیں، اس کے نوٹس پڑھ لیں، اس کی سلائڈز دیکھ لیں، تو پھر دوبارہ جا کے دیکھیے اس چیپٹر کو دوبارہ جب پڑھیں گے یا اس ٹاپک کو دوبارہ جب آپ اٹیمپٹ کریں گے تو یو ول فیل اے ڈفرنس. اور پھر آپ کو وہ کبھی بھی دوبارہ اتنا پرابلم نہیں ہوگی، جب دوبارہ اس کو دیکھیں گے تو ایوری تھنگ ول بی ریکال. دیٹ از نیسری دیٹ یو شوڈ پٹ آل آف لٹ آف ایفرٹ ان دس پروسیس سو دیٹ اٹ شوڈ بیکم ایزی، ناٹ اونلی ایزی بٹ یو کین آلسو یوز اٹ فار ان یور لائف. تو لیٹ سی واٹ ایلس وی ہیو کورڈ ان لیکچر نمبر 9. تو اس کے علاوہ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ یس، وی آلسو ڈسکس کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے فنکشن ساری آرگنائزیشن کے اندر اسی طرح ہوتے ہوں. اینڈ وی پک ون ریفرنس پوائنٹ کہ جی دیکھتے ہیں کہ سائز آف آرگنائزیشن کے اندر اگر ڈفرنٹ سائز کی آرگنائزیشن ہیں تو وہاں پہ کیا فرق ہوگا. اینڈ اف یو ریمبر وی کور 3 ٹائپ آف آرگنائزیشن، اسمال آرگنائزیشن یا فیملی بزنس جس کو کہتے ہیں، چھوٹا سا چند لوگوں کے ساتھ آپ نے کوئی بزنس شروع کیا، وہاں پہ HR کے فنکشن ٹوٹلی ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. रोल डिफरेंट हो जाता है. सिमिलरली ए मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी हमने, एंड देन वी कवर द लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन. और लार्ज साइज में भी हमने फिर ये डिस्कस किया कि एक तो ट्रेडिशनल तरीका है, बट ड्यू टू चेंजेस एंड न्यू अरेंजमेंट्स नाउ पीपल आर फोकसिंग मोर टूवर्ड आउटसोर्सिंग. वो जो बेसिक कुछ फंक्शन थे जो एचआर डिपार्टमेंट खुद करता था, अब वो आउटसोर्सिंग भी कर रहे हैं. वो क्या थे? लाइक ट्रेनिंग, यस, और इस तरह की एक्टिविटीज. लेकिन उसके साथ हमने ये भी देखा कि रोल भी चेंज हो गया. वो क्या रोल चेंज हुआ? कि जो पहले एचआर डिपार्टमेंट जो कंट्रोलिंग फंक्शन, प्रोटेक्टर फंक्शन या स्क्रीनिंग का काम करता था, अब आस्ता आस्ता दे हैव बीन शिफ्ट, दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड चेंज एजेंट. दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ चेंज एजेंट या साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर का रोल प्ले कर रहे हैं. तो इस सारी चीज को हमने वी हैव ट्राइड टू कवर ड्यूरिंग अवर लास्ट लेक्चर. सिमिलरली एज आई सेड कि हमने मुख्तलिफ साइज की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी देखा कि स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल होता है, मीडियम साइज में क्या होता है और लार्ज साइज में क्या होता है. आई होप वी आर डूइंग फाइन गाइस, लेट्स सी. हाँ, एक चीज तो मिस कर गए. यस, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में हमने एक और चीज भी डिस्कस की थी. वो था कि क्या फैक्टर हैं, क्या फोर्सेस हैं जो एचआर फंक्शंस को इफेक्ट करती हैं. तो कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं? उसको एनवायरनमेंट कहते हैं. और कितनी किस्मों की एनवायरनमेंट होती है? इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. यस, यू आर राइट. लेकिन इसका एक और नाम भी दिया गया है. चंद जगहों पे आप देखोगे कि उसको कुछ और भी कहा जाता है. उसको माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट भी कहा जाता है. और इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? वो चीज, वो फोर्स जो सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके लोगों को इफेक्ट करे, उसको हम इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल एनवायरनमेंट या माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं. लेकिन वो जो चीज, वो जो फोर्स हो, वो जो एक्टिविटी है जो ना सिर्फ आपको इफेक्ट कर रही है बल्कि और भी काफी लोगों को इफेक्ट कर रही है, इवन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, तो अदर कंट्रीज, अदर ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम फिर मैक्रो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं. तो इसके अंदर भी हमने इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजी एंड इवन इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हमने तो मैनेजर का एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, द प्रायोरिटीज क्या हैं, दे ऑल इफेक्ट योर डिफरेंट फंक्शंस, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एचआर फंक्शंस. सो आई बिलीव नाउ इट शुड बी क्लियर टू यू. तो आज हमने क्या चीज डिस्कस करनी? इफ यू रिकॉल अगेन ड्यूरिंग लेक्चर नंबर 9 समवेयर वी हैव डिस्कस्ड द लाइन मैनेजमेंट इफेक्ट. तो मैंने आपसे कहा था कि आई ट्राई टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट इज लाइन मैनेजमेंट, वॉट इज स्टाफ अथॉरिटी एंड वॉट इज लाइन अथॉरिटी, और इसका क्या रिलेशनशिप है, और एचआर डिपार्टमेंट कौन सा फंक्शन पार्ट प्ले करता है, क्या वो लाइन मैनेजर है या उनको हम स्टाफ मैनेजर कहेंगे या फंक्शनल मैनेजर कहेंगे. उस चीज को समझने के लिए लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे. तो हमने लाइन और स्टाफ एस्पेक्ट रिलेटेड टू एचआर हम आज डिस्कस करना है. When we started discussing the role of HR department in different organizations of different size, वहां पे आपने देखा था कि one way or other way, all managers, they have to play, in a sense, HR functions too. Even if they are, it is in a small organization, or it is in a medium-sized organization, or it is in a large-sized organization. So one way or other, each manager is involved in HR function, HR activities. तो ये चीज को जरा बेसिक ध्यान में रखिए और फिर आगे चलते हैं. तो देखा गया तो समझा ये जाता है यदि इससे भी बात समझ आती है कि जितने भी मैनेजर ड्यूटीज हैं एचआर की, ये रिलेट करती हैं किससे, लाइन मैनेजर ड्यूटीज के साथ. लेकिन ये चीज समझने के लिए सबसे पहले हमें तो मालूम हो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइन मैनेजर और लाइन अथॉरिटी एंड स्टाफ अथॉरिटी. अब लाइन से आप एक स्ट्रेट लाइन की बात शायद आपके जहन में आती हो, बट लाइन हेयर मीन, अगर जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी जगह पढ़ेंगे तो आप वहां पे ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन देखेंगे कि किस तरह का है. वो छोटे छोटे ब्लॉक बने होते हैं कि प्रेसिडेंट है. आई थिंक यू हैव आल्सो सीन इट ड्यूरिंग अवर लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 9 के, जब मैंने मुख्तलिफ डायग्राम में आपको बताने की कोशिश की थी कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है, मीडियम साइज में कैसे होता है. तो वो उनका आपस में जो लिंक होता है एक लाइन के जरिए होता है, उस चीज से इसको लाइन अथॉरिटी या लाइन मैनेजर के तौर पे समझा जाता है. लेकिन लेट्स गो इन लिटिल बिट इन अ सिंपलेस्ट वे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइन एंड स्टाफ मैनेजमेंट और मैनेजर और अथॉरिटी क्या चीज है. और इट हैज टू डू समथिंग विद द अथॉरिटी, लाइन वर्सेस स्टाफ अथॉरिटी. इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मालूम हो कि अथॉरिटी क्या चीज है. आपने कुछ लफ्ज सुने होंगे, पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, एंड व्हाट इज डिफरेंस देयर. द पावर इज बेसिकली समथिंग बाय विच यू कैन कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल. अब आप उनसे डिजायरेबल काम ले सकते हैं, एंड दैट कैन बी लीगल और इलीगल, वट एवर. लेकिन अगर लेजिटिमेट पावर है, लीगल पावर है, उसको हम अथॉरिटी का नाम देते हैं. और इन्फ्लुएंस क्या है कि किसी के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, उसकी एक्सपर्ट होने की वजह से, उसकी नॉलेज की वजह से, उसकी बुजुर्गी की वजह से, इफ समबडी इज फॉलोइंग हिज और हर डायरेक्शन, दैट इज इन्फ्लुएंस. बट हेयर विल बी मेनली कंसर्न विद अथॉरिटी पार्ट. और अथॉरिटी क्या चीज है, एज शोन इन दिस स्लाइड, अथॉरिटी इज बेसिकली making decision or directing work or giving orders, but this should be legitimate. Organization ke andar jo official capacity mein log jo ki ye kaam kar rahe hote hain, unke paas authority hoti hai. So based on authority we can differentiate the people working or manager or department as line department or line managers or staff manager. लेकिन थोड़ा सा अथॉरिटी को भी देख लें, कितनी किस्मों की होती है. जैसे मैंने आपसे कहा कि लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी और फंक्शनल अथॉरिटी. लाइन अथॉरिटी क्या होती है, दिस इज राइट टू मेक द डिसीजंस एंड टू गिव ऑर्डर टू सबॉर्डिनेट. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर द सीईओ और एडमिन में जो लोग होते हैं, दे हैव द लाइन अथॉरिटी. उन्होंने वो डिसीजन जो है, सीईओ ने डिसीजन दिया कि ये करना है, डायरेक्शन दी है, तो अदर डिपार्टमेंट हैव टू फॉलो इट, दे आर सबॉर्डिनेट, तो उनके पास लाइन अथॉरिटी आ गई. लेकिन जो स्टाफ अथॉरिटी है, देयर फंक्शन इज समथिंग डिफरेंट. यस, दे आर बेसिकली, दे हैव द राइट नॉट ओनली टू ओबे द ऑर्डर्स बट ऑल्सो टू एडवाइज द लाइन अथॉरिटी पीपल. जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो मैनेजर हैं वहां पे, उनको एडवाइज करना, ना सिर्फ एडवाइस करना बल्कि उनको असिस्ट करना ताकि वो अपनी अथॉरिटी को प्रोसेस कर सके. तो स्टाफ का फंक्शन क्या हुआ है, काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि दे डोंट हैव द राइट टू से समथिंग, यस दे कैन आल्सो एडवाइस. जिस तरह एचआर के लोग हैं, वो एडवाइस दे सकते हैं कि हमें इस तरह के लोग चाहिए, इनको इस तरह की ट्रेनिंग चाहिए आप. और फंक्शनल अथॉरिटी कौन सी होती है, ये वो अथॉरिटी होती है कि जब लेट्स सी यू डोंट हैव एन स्पेसिफिक राइट टू मेक द डिसीजन, लेकिन फिर भी आपको अपने फंक्शन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू डिसाइड सर्टेन थिंग, देयर द फंक्शनल अथॉरिटी विल स्टार्ट टेकिंग प्ले बेसिकली. तो थोड़ा सा आप, आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड. अगर ये चीज समझ नहीं आए और तो कोई भी मैनेजमेंट की बुक ले लें. मैंने कोशिश की है कि एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन भी हर एक टर्म की और एक्सप्लेनेशन दीजिए ताकि ये चीज आपके जहन से क्लियर हो जाए. बट एनीवे, आई होप एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर इवन यू विल बी मच बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन لائن اینڈ اسٹاف اتھارٹی اور ایچ آر کا کیا رول ہے, کیا وہ لائن میں آتے ہیں کہ لائن اتھارٹی میں وہ پارٹ پلے کرتے ہیں, یا وہ فنکشنل ایریا میں آتے ہیں یا وہ اسٹاف ایریا کے اندر آتے ہیں. ہو از لائن مینیجر؟ مینیجر کی ڈیفینیشن تو آپ نے پہلے چند لیکچر کے اندر بھی کافی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. اینی پرسن آف دا آرگنائزیشن ہو ہیز دی ہو ول ڈو پلان پلاننگ آرگنائزنگ کنٹرولنگ لیڈنگ فنکشن, اس کو ہم مینیجر کہتے ہیں نا. لیکن یہاں ہم بات کریں لائن مینیجر کی, تو ہو از لائن مینیجر؟ اے مینیجر ہو از اتھورائز بائی دی آرگنائزیشن, یس, ٹو ڈائریکٹ دا ورک آف سبارڈینیٹس اینڈ ریسپانسبل فار واٹ, وائی ہی آر شی از ڈائریکٹنگ, بیکاز ہی از ریسپانسبل فار اکمپلشنگ دی آرگنائزیشن گول. بیسیکلی وہی بات ہے جو ہم نے ایک بیسک جب مینجمنٹ کو سمجھنے کے لیے, آرگنائزیشن کو سمجھنے کے لیے اور مینیجر کو سمجھنے کے لیے ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. وہاں بھی کیا ہوتا تھا کہ مینیجر از اے پرسن ہو پلان, ہو آرگنائز, ہو لیڈ اینڈ ہو کنٹرول ڈفرنٹ ریسورسز آف آرگنائزیشن ٹو اچیو دا گول. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اگین دا سیم تھنگ, بٹ ہیئر وی آر ڈسکسنگ ود ریفرنس ٹو اتھارٹی, کہ وہ مینیجر ہے جو اپنے سبارڈینیٹ کو ڈائریکٹ کر رہا ہے تاکہ وہ جو پری ڈیٹرمنٹ گول ہے اس کے وہ اچیو کر سکے. لیکن آپ کہیں گے جی تو ہر لیٹس سی ایچ آر مینیجر بھی تو وہی کرتا ہے, کوئی اور مینیجر ہے ایون اف دے آر ناٹ ان دا لائن پوزیشن اسٹل دے آر پرفارمنگ دا سیم تھنگ, یس, بٹ ہیئر دے آر ایکٹنگ ایز فسیلیٹیٹر فار دا مین پرپز آف دی آرگنائزیشن. لائن مینیجر نے کیا کرنا ہے, اکمپلشنگ گول, دے آر اتھرائز ٹو ڈائریکٹ دی ورک آف سبارڈینیٹس اینڈ دے آر آلویز سم ون باس, کسی نہ کسی کے وہ باس ہی ہوتے ہیں, اسی لیے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں نا ان کے, جو ان کی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں. اور پھر اس حوالے سے اف دے آر ٹیکنیکل پیپل, اف دے آر ہیومن ریسورس پیپل, اف دے آر فائنینشیل پیپل, دے آلویز اسسٹ دیم, دا لائن مینیجر ناٹ اونلی اسسٹ دیم بٹ ایڈوائز دیم آلسو, سو دیٹ وہ جو ان کا آبجیکٹو ہو اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے اچیو ہو سکے. تو پھر اسٹاف مینیجر کون ہوا؟ اے مینیجر ہو اسسٹ اینڈ ایڈوائز لائن مینیجر. اب اس سے آسان تو میں نہیں کر سکتا آپ کے لیے, آئی ہوپ کہ یو آر پکنگ اپ ناؤ. لائن مینیجر جو ہے وہ ایچ آر کے فنکشن بھی پارٹ پلے کرتا ہے ون وے آر ادر وے, وہ کیسے کرتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. پلیسنگ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, ویری امپورٹنٹ آسپیکٹ آف آرگنائزیشن. یہ کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مینیجر فائنانس کس کو لگانا ہے, ایڈمنسٹریشن میں کس کو رکھنا ہے؟ لیٹس سی, اف اے پرسن ہیز 10 اور 15 ڈفرنٹ سیٹ اپس, تو یہ اسی کی اس میں آتا ہے, اس کی اتھارٹی میں آتا ہے, اس کی پاور میں آتا ہے کہ ہی شوڈ ڈیسائڈ اور شی شوڈ ڈیسائڈ کہ یہ بندہ کہاں پہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے. آف کورس ہی اور شی مائٹ گیٹ ہیلپ فرام ادر ڈپارٹمنٹ, پرسنل ڈپارٹمنٹ اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ, کہ ان کو گائڈ کرے کہ یار اس کو اگر میں وہاں بھیج دوں مشورہ لے سکتا ہے, ایڈوائز لے سکتا ہے, بٹ دا ڈیسیژن ول بی فرام ہز سائڈ اور ہر سائڈ. اور یہ پہلا فنکشن ہے, ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ایچ آر کا فنکشن ہے نا, کون پرفارم کر رہا ہے؟ ٹاپ مینیجر, مینجمنٹ, دا سی ای او اور دا لائن مینیجر, ہی اور شی از ڈیسائڈنگ اس کو کہاں بھیجنا ہے. انیشیلی اٹ از تو ورک آف ایچ آر ڈپارٹمنٹ, اٹ ڈزنٹ مین آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو کنفیوز یو کہ بھائی یہ اس کا کام تھا اس نے کر لیا, نہیں, کام تو پریویو اس میں آتا ہے نا کہ جس کا جو اس کا مالک ہے, جو اس کا چیف ایگزیکٹو ہے, ہی ہیز اے رائٹ ٹو سی دا بگ پکچر اور اس کے مطابق ساری چیزیں ایڈجسٹ کرے. تو پہلا فنکشن جو ایچ آر کا سے ریلیٹڈ ہے, جو لائن مینیجر پرفارم کرتا ہے, دیٹ از پلیسنگ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. And this is also our basic objective of HR. HR basically is what it is, human resource management. तो बेसिक उस मैनेजमेंट में सबसे पहला पार्ट ये होता है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. दे आल्सो स्टार्ट न्यू एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन. हाउ दे स्टार्ट? दे डिसाइड फॉर द ओरिएंटेशन. ये भी आगे चीजें हम डिस्कस करेंगे कि ओरिएंटेशन क्या होती है. कि जब आप इसको एक चंद बुक बुक के अंदर आप देखेंगे, इसको सोशलाइजेशन प्रोसेस का नाम भी दे रहा था. दिस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन इज बेसिकली यू आर ट्राइंग टू एक्लेमेटाइज ए न्यू पर्सन हु हैज रिसेंटली ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन, कि वो इसके अंदर अपने आप को कंफर्टेबल फील कर इसको समझ ले. ये भी स्टाफ मैनेजर जो है, सॉरी जो लाइन मैनेजर है, वो ये परफॉर्म करता है. तो ये एचआर का फंक्शन है जो लाइन मैनेजर भी उमूमन परफॉर्म कर रहे होते हैं. सिमिलरली ट्रेनिंग, अब डिसीजन, सी हु इज एडवाइजिंग दिस? द एचआर डिपार्टमेंट इज एडवाइजिंग कि यस वी हैव सीन, वी हैव इवैल्यूएटेड द सिस्टम ड्यू टू, जिसका हम लास्ट लेक्चर नंबर 9 में परफॉर्मेंस अप्रेजल को डिस्कस किया था, कि उसी के बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि ट्रेनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. हु इज मेकिंग द डिसीजन हियर? द टॉप मैनेजमेंट. ऑफकोर्स द एचआर डिपार्टमेंट इज गाइडिंग देम, एडवाइजिंग देम कि यस वी नीड ट्रेनिंग फॉर सच एंड सच पीपल बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू मार्क, और वी नीड ट्रेनिंग फॉर सच एंड सच पर्सन बिकॉज इन द नेक्स्ट फेज विल बी ब्रिंगिंग न्यू इक्विपमेंट, न्यू मशीनरी, सो विल बी नीडिंग मोर एक्सपर्ट पीपल आर एडवांस, उसके अंदर कोई नई चीजें उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए. लेकिन डिसीजन कौन कर रहा है? डिसीजन आपका टॉप मैनेजमेंट कर रही है या लाइन मैनेजर जो है वो कर रहा है. सिमिलरली बिकॉज ही हैज और शी हैज टू परफॉर्म इन ए वे दैट दे शुड ऑल टूगेदर अचीव द ऑब्जेक्टिव. अगर किसी वजह से वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा तो इंप्रूवमेंट जो होगी परफॉर्मेंस में लोगों की, उसका भी डिसीजन कौन करेगा? कोई लाइन मैनेजर करेगा, बट विद द हेल्प ऑफ अदर स्टाफ मैनेजर्स और जो उसकी सर्विसेज दे रहे हैं उनके, उनसे डिस्कस करने के बाद ही ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी. अनदर फंक्शन, क्रिएटिविटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ टूडेज ऑर्गेनाइजेशन. अनलेस यू आर क्रिएटिव, You cannot go for the development. अब creativity आजकल is again becoming a buzzword. All organizations they are striving or they are trying very hard so that they should come up with something new, new idea, some creative product, some creative idea of doing business. तो जितना ज्यादा आपका concern आप show करेंगे, और again organizations के अंदर देखा गया है, unless you have top commitment for certain things, you cannot bring the change, you cannot create something different. So creativity ko bhi initiate karana, isko facilitate karna, ya isko, because unless top management is convinced, aap kuch cheezein create nahi kar sakte. To uske liye, let's see, if you want to have more R&D, research and development, so that you should come up with a new idea. So uske liye bhi, wo jo top manager hai, ya line manager hai, uski involvement ya uska decision zaruri hai. तो यहां भी टेक्निकली देखा जाए है तो एचआर का फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से, बट स्टिल द लाइन मैनेजर इज द पर्सन हु इज मेकिंग द डिसीजन. शुड वी स्पेंड ऑन एक्स्ट्रा रिसोर्सेज फॉर दिस पर्पज आर नॉट? शुड वी इनकरेज इट आर नॉट? व्हाट शुड वी डू? जस्ट द रूटीन वर्क. तो क्रिएटिविटी को उभारने के लिए, क्रिएटिविटी को लाने के लिए लाइन मैनेजर इज ऑल्सो प्लेइंग हिज रोल. Working relationship within the organization, who is responsible for that? Yes, of course, HR department, other departments, they have to act, but still, the decision is of the line manager. So, किसी भी एच तो जो हम बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि it is all are playing different kind of roles. और कभी कभी वो पिक्चर इतनी ओवरलैप हो जाती है कि हमें समझ नहीं आती कि ये किसका काम था, किसने किया. लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाए तो फिर ये चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती है. ये ध्यान में रखिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोगों का रोल होता है डिसीजन मेकिंग, कुछ का रोल होता है एडवाइस का और फैसिलिटेशन का, और कुछ का है कि वो फंक्शन लेवल पे जाके परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो अथॉरिटी बाय वर्चू ऑफ दोज लीगल जो एस्पेक्ट है वो लाइन मैनेजर के पास ही होती है कि दे हैव टू मेक डिसीजन यस और नो. ऑफ कोर्स दे विल बी सजेस्टिंग, दे विल बी प्रपोजिंग, लेकिन डिसीजन लाइन मैनेजर का ही है, सीईओ का है या जो उसका अथॉरिटी पर्सन होगा. सिमिलरली डिसाइडिंग अबाउट द पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड इंप्लीमेंटिंग देम इज डिसीजन ऑफ द लाइन मैनेजर. यू कैन अगेन से इंप्लीमेंटेशन तो कोई और लोग कर रहे होते हैं, यस बाई बट बाई वर्च्यू ऑफ दैट ऑर्डर वो डिसीजन या अथॉरिटी जो उनको कन्वे होती है सबॉर्डिनेट्स को, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन उसकी सर्विसेज फिर बाकी लोग कर रहे होते हैं. तो ये भी जो एचआर से रिलेटेड, क्योंकि जो पॉलिसीज किसने करनी है, किसके बारे में पॉलिसीज है, वो लोग ही जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हीं के हवाले से है ना. तो फिर यहां भी है तो एचआर का फंक्शन, ह्यूमन रिलेटेड फंक्शन, बट हु इज परफॉर्मिंग द लाइन मैनेजर. ऑफ कोर्स ही इज आल्सो और शी इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, बट ही हैज अथॉरिटी टू डू दैट. Similarly, when we're talking about production things, controlling the labor cost is very important. आजकल के दौर में अगर आप business की बात करते हैं तो हर एक business की एक जो ultimate reason क्या होता है, the mission statement might be different, कि लोग कह रहे हैं कि हमने ये करना है, लेकिन अगर business point of view से देखा जाए तो ईच ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर. नाउ व्हाट इज मार्केट शेयर, कि उनका ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो. लेट सी इफ यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट लें. अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी सर्विस को यूज करें. ये हर ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मेन मोटो या मेन ऑब्जेक्टिव होता है. या दूसरे लफ्जों में फाइनेंशियल टर्म में कि प्रॉफिट अपना किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं. और इस चीज को देखने के लिए इस वक्त हम जब बिजनेस के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो उनको बताते हैं कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. वन इज कंट्रोलिंग द कास्ट, अनदर थिंग इज क्रिएटिंग द डिफरेंशिएशन. ऑफ कोर्स नाउ वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड समथिंग डिफरेंट, इसका डायरेक्ट इससे इफेक्ट नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको इस चीज का इफेक्ट समझाने के लिए कि कास्ट अगर आप कंट्रोल करेंगे तो उसका क्या फायदा है. अगर आप कास्ट कम करेंगे, क्योंकि इस वक्त कंपटीशन इज वेरी हाई, इस तरह जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपने हमने सुना पढ़ा, टेक्नोलॉजी नई आ गई है, हर मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. नाउ हाउ टू सर्वाइव, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव द मोनोपोली देयर. पहले ये होता था कि एक लेट्स सी के एक कंपनी है वो एक चीज प्रोड्यूस कर रही है, नोबडी इज देयर टू कंपीट देम, तो दे वर काइंड ऑफ फ्री टू चार्ज एनीथिंग. लेकिन अब जो कंपटीशन का दौर है, कंपटीटिव वर्ल्ड आ गया है, तो आज का तो ऐसा नहीं है. अगर एक मार्केट में कोई आप चीज लेके आते हैं जिसकी कीमत 10 रुपए है, तो साथ ही दूसरा मार्केट में आके आपको 9 रुपए की वो चीज दे रहा है, वो कहता है कि चले मैं थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम कर लेता हूं, लेकिन प्रोवाइडेड क्वालिटी इज द सेम. जस्ट इमेजिन इफ लेट्स सी द बोथ पर्सन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट का, उसका कास्ट उन सबको 8 रुपए आ रही है. वो जो 9 रुपए में सेल कर रहा है उसने 1 रुपए प्रॉफिट पे काम शुरू कर दिया, लेकिन दूसरा 2 रुपए प्रॉफिट पे काम कर रहा था, तो उनके पास ज्यादा मार्जिन प्ले करने का प्राइस में ज्यादा नहीं है. 8 और 10 के दरमियान 2 रुपए का उनके पास मार्जिन है, तो कोई 9.5 का, कोई 9 का, कोई इवन 10 का. लेकिन जस्ट इमेजिन इफ ए पर्सन, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ ए डिपार्टमेंट वॉज एबल टू कट द कास्ट due to any reason, having the best technology, उन्होंने जो inventory losses होती हैं उनको control कर लिया, उनको जो raw material था वो किसी से सस्ता मिल गया, या उनकी transportation काम cost कम होगी, तो क्या हुआ कि उन they were able to create the produce the same product for the 6 rupees. अब उनको margin मिल गया 6 to 10 के दरमियान 4 रुपए का. Now don't think that organization or that group has more edge in the market and they will become the market leader. तो इस चीज को भी यहां भी एचआर के रिलेटेड, और आपने सुना भी होगा कि जी चाइना की जो माल है बहुत मार्केट में कंपटीशन में बड़े सबसे आगे है, उससे कंपीट करना मुश्किल हो रहा है सबके लिए. और साथ ये कहा जाता है क्योंकि वहां पे लेबर चीप है, लोग हमारे साथ, हम देखा आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड this area. They're even going to China, they're going to India, they are even thinking of coming to Pakistan. But why they are moving from those big countries to Munka, ki apni apni sab even production sari yahan leke aa rahe hain, to yahan pe labor cost kam hai. Hamare Pakistan mein thodi si high hai as compared to China or India. That is why our businessmen, they are feeling difficulties in organization and competing in those countries in the international market. To agar लेबर कास्ट को आप कंट्रोल कर लें तो आपके पास एज आ जाती है. तो दिस वाज आउट ऑफ काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि लेबर कास्ट कंट्रोल करने का क्या जरूरी है और क्यों टॉप एग्जीक्यूटिव या लाइन मैनेजर इन्वॉल्व है. यस अगेन एचआर डिपार्टमेंट विल बी फैसिलिटेटिंग देम, असिस्टिंग देम टू हाउ टू गो फॉर द लेबर कास्ट कंट्रोल, लेकिन डिसीजन इज अगेन बाय द टॉप मैनेजमेंट और लाइन मैनेजर. Developing the abilities of each person in the organization. Who will do that? Different training departments, HR departments, or technical departments. But who will give the order? Who will decide for it? It is the line manager. Agreed? Similarly, maintaining the morale within the organization. Now here again, different staff managers, different services departments, or they are different functional departments, they will be playing their role, but under whose direction? The line manager. So here this function is also being decided by line manager. Similarly, protecting employees' health and physical condition. ये भी आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, अपने सेटअप भी हो सकता है, बट अगेन डिसीजन टॉप मैनेजमेंट या लाइन मैनेजर करेगा जिसके पास अथॉरिटी है कि हाउ फार यू कैन गो, क्या क्या अरेंज करना है. गाइडलाइन ले सकता है आपके हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से, एम्प्लॉइज की जो वेलफेयर डिपार्टमेंट होते हैं उनसे ले सकता है. Of course, HR department is involved there, but decision is of the line manager. So that is also the function of HR, which is being performed by line manager by his or her decisions or orders. आगे देखते हैं क्या है. इसी तरह staff managers जो होते हैं वो भी HR कुछ jobs को कुछ फंक्शंस का पार्ट प्ले कर रहे होते हैं. एंड पे आप जाके देखेंगे एक नई पिक्चर निकलेगी कि एचआर डिपार्टमेंट के लोग सारे फंक्शन खुद भी कर रहे होते हैं सेम टाइम. एचआर मैनेजर्स कैरीज आउट थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. वन इज दे परफॉर्म द लाइन फंक्शन टू, यस विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन विद इन देयर डिपार्टमेंट दे आल्सो परफॉर्म लाइन फंक्शन बेसिकल. कैसे? उनको जो डायरेक्टिव टॉप एग्जीक्यूटिव ने दिया तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन नाउ द एचआर मैनेजर या एचआर डायरेक्टर जो होगा वो ही और शी विल अडॉप्ट द रोल ऑफ एज ए लाइन मैनेजर. वो अथॉरिटी भी यूज कर सकता है या उसका इन्फ्लुएंस की वजह से वो अथॉरिटी बन जाती है. ही माइट नॉट बी ऑथराइज टू मेक सर्टन डिसीजन, but because he is now more close to chief executive or line manager and he convinces him or her ki ji humne ye karna hai, to naturally uski baat authority ban gayi, to ye bhi ek uska line function ke andar aa gaya. Isi tarah coordination function bhi kar rahe hote hain of different departments, ye bhi hr ke jo staff hai ya hr ka log hai wo coordination ka kaam bhi kar rahe hote hain. Kaise? Because they are involved in the function control, training, development, even वो जो आप बाकी जो human related activities को आप functional level पे control कर रहे हैं ये भी HR department कर रहा होता है. Similarly, services तो वो दे ही रहे हैं because they are playing the staff function there. So ये तीनों functions एचआर डिपार्टमेंट भी और एचआर मैनेजर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो आर वी क्लियर और कंफ्यूज? सोचिए थोड़ा सा, लेकिन अगर आपने पढ़ा होता तो मेरा ख्याल है ज्यादा क्लियर हो जाता। लेट्स ट्राई वंस अगेन, लेकिन थोड़ी सी चीजें क्लियर करके। कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर से रिलेटेड आती हैं। हम कहते हैं एचआर एग्जीक्यूटिव्स है, एचआर स्पेशलिस्ट है, और जर्नलिस्ट उसको भी कहते हैं। उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कहाँ पे फिट इन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, थोड़ा सा इनको समझ लें, फिर आई विल ट्राई अगेन तो थोड़ा सा इसको कवर करके सबको, और आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ चीज को समझाने की कोशिश करूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआर एग्जीक्यूटिव्स क्या हो सकते हैं? दे परफॉर्म वन और मोर एचआर फंक्शंस, लेकिन इसके नाम के साथ एग्जीक्यूटिव लगा हुआ ना। इट इज अ टॉप लेवल मैनेजर पोजिशन। एंड देर आर रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली टू होम द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एच आर की जितनी एक्टिविटीज होती है इन सबको वो हेड कर रहा होता है, और टॉप मेनली रिस्पॉन्सिबल अब रिस्पॉन्डिंग आर आंसरेबल टू चीफ एग्जीक्यूटिव ओनली। इसको हम एच आर एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और जो एच आर जर्नलिस्ट होता है उसका क्या रोल है? ऑफ कोर्स ही आर शी माइट बी एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन समवेयर बिलो दिस एचआर एग्जीक्यूटिव, और ये वेरियस जो एचआर रिलेटेड टास्क होते हैं एरियाज हैं उसके अंदर काम कर रहा होता है। एंड इट इज इन्वॉल्व इन सेवरल आर ऑल दोज फाइव एचआर फंक्शंस। जो लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने पांच एरियाज जो मेन एरियाज जो फंक्शनल एरिया हमने डिस्क्राइब किए थे डिस्कस किए थे उनमें इधर वन में और सबके अंदर भी इन्वॉल्व हो सकता है डिपेंडिंग ऑन अगेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट अबाउट द स्पेशलिस्ट? आपने मुख्तलिफ ये टर्म यूज सुनेगी कि वो फला चीज के स्पेशलिस्ट हैं। ही इज द डॉक्टर एमबीबीएस की बात करते हैं वो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। तो इसका ये मतलब नहीं वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो स्पेशलाइज लेवल तक चले गए, वो ज्यादा डिटेल में उन्होंने उसको स्टडी किया है। नहीं है आर शी हैज अ उनकी जो जो वर्किंग है या उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो डिटेल में उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हैं। इसी तरह एचआर के अंदर वी माइट हैव सर्टन स्पेशलिस्ट, कोई कंपनसेशन का हो सकता है, कोई ट्रेनिंग में ज्यादा उसकी एक्सपर्टीज हो सकती है। तो क्या करेक्टरिस्टिक्स हुए इसके फिर? मे बी एन एच आर एग्जीक्यूटिव मैनेजर और नॉन मैनेजर पोजिशन पर्सन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टिपिकली कंसर्न विद ओनली वन ऑफ द फाइव फंक्शन एरिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, एम्प्लाइज कंपनसेशन स्पेशलिस्ट, स्टाफिंग जो आपकी जो हायरिंग वगैरह होती है उसके लिए उसका स्पेशलिस्ट है, कि उसको इंटरव्यू लेना आप सारे प्रोसेस को समझना ज्यादा डिटेल में आता है, इसलिए उसको स्पेशलिस्ट स्पेशलाइज रोल प्ले करने के लिए दे दिया गया, उसको हम एचआर स्पेशलिस्ट कहते हैं। सो अगेन यू हैव सीन दिस सेम पिक्चर ड्यूरिंग अवर लेक्चर नंबर 9। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को देखें कि एचआर जो डिपार्टमेंट है वो आपकी जो ऑपरेटिंग मैनेजर है उसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है, दे आर प्लेइंग स्पेसिफिक सर्विसेज, तो यहां पे उनका रोल सर्विस डिपार्टमेंट का आ गया। दे आर एडवाइजिंग, व्हेन दे आर एडवाइजिंग तो आपने याद होगा शुरू में हमने क्या कहा था कि स्टाफ एक लाइन और एक स्टाफ है, स्टाफ मैनेजर क्या होता है जो एडवाइज कर रहा है, जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है। तो तीसरा जो इसका फंक्शन है कोऑर्डिनेशन का। तो टेक्निकली क्या हुआ, एचआर डिपार्टमेंट इज प्लेइंग ऑल थ्री डिफरेंट रोल। एचआर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट टू असिस्ट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजर एंड द एम्प्लॉइज। तो इसका रोल तो ज्यादा ब्रॉडर हो गया ना, Now see, HR department is there to help the organization. In which way? So that organization ke liye jo resources hai manage human related ya jo organization ka resource jise hum human resource kehte hain usko facility uski organize uski directing ke liye uski controlling ke liye uski planning ke liye wo organization ko help kar raha hai. Na sirf organization ko help kar raha hai balki wo jo uska CEO hai ya manager hai usko bhi to help kar raha hai. Kaise help kar raha hai? By giving advice, by obeying his directive or implementing his directives, और वो जो employees काम कर रहे हैं अंदर उसके लिए भी तो उनको facilitate कर रहे हैं. वो कैसे? उनके benefits, उनके rights, उनकी compensation, उनकी training and so on. So technically HR department is there again to assist organization, to assist managers, and to also help or assist the employees. दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि HR is the service department. तो लेकिन जो हमने शुरू किया था लाइन और वर्सेस स्टाफ में, तो फिर इसका रोल स्पेसिफिकली क्या हुआ? यहां तक पहुंचते हुए तो हमारे जन में ये आ गया कि दे आर स्पेसिफिकली स्टाफ अथॉरिटी, दे हैव द स्टाफ अथॉरिटी. और स्टाफ अथॉरिटी अगर आपको याद हो, भी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इज टू एडवाइज एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव. तो HR डिपार्टमेंट वो फंक्शन प्ले कर रहा है जिसमें ज्यादा सर्विसेज दे रहा है, या स्टाफ का रोल एज ए स्टाफ अथॉरिटी रोल प्ले कर रहा है. लेकिन अगेन इसका यह मतलब नहीं है, हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि वो इसी स्टेज पे लाइन का फंक्शन प्ले कर देता है, इसी सिचुएशन के अंदर वो फंक्शनल पार्ट प्ले कर रहा है, और ऑफकोर्स द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम दे आर डूइंग द स्टाफ फंक्शन. सो द यूज ऑफ लाइन, स्टाफ एंड functional authority results in what? So they are playing a dual type of role. What dual role? Jo HR ki responsibility, HR management ki responsibility ban jata hai. Lekin again remember that aaj ka jo lecture hai basically wo aapko confuse karne ke liye nahi hai, kyunki ye bar bar terms kahin na kahin aayengi aapke aage discuss karenge. Line manager kya hai? जी ये लाइन मैनेजमेंट में रोल प्ले कर रहे हैं, ये स्टाफ का रोल प्ले कर रहे हैं, ये सर्विसेज का रोल प्ले कर रहे हैं. तो वी थॉट दैट लेट्स डिस्कस दोज फ्यू थिंग्स, ऑफ कोर्स इन नॉट इन दैट डिटेल, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये चीजें क्या है. तो क्या ख्याल है, कुछ चीज समझ आई? नहीं आई तो फिर समराइज कर लेते हैं दोबारा इसको. क्या है इसके अंदर? टुडे वी स्टार्टेड विद लाइन एंड स्टाफ एस्पेक्ट ऑफ HRM. अब लाइन उसको समझने के लिए हमने देखा कि पहले सबसे पहले इसका ताल्लुक किस चीज से, इसका ताल्लुक अथॉरिटी से है कि लेजिटिमेट पावर किसके पास क्या काम करने की क्या है, कितनी और कहां तक जा सकते हैं. उसको डिफ्रेंशिएट हमने कैसे किया कि लाइन वर्सेस स्टाफ अथॉरिटी. तो लाइन अथॉरिटी वो हुई कि जिसमें उनके पास लेजिटिमेट पावर है टू मेक द डिसीजन, डायरेक्टिव और सुबॉर्डिनेट को डायरेक्टिव देना और उससे काम लेना. और इसी तरह स्टाफ टू असिस्ट टू इंप्लीमेंट इट. सो आई होप यू आर क्लियर नाउ. और HR डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली इज ए स्टाफ फंक्शनिंग प्ले कर रहा होता है. दे आर द सर्विसेज डिपार्टमेंट, दे आर द स्टाफ अथॉरिटी, बट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दे आर ऑल्सो प्लेइंग द लाइन फंक्शन, द स्टाफ फंक्शन एंड फंक्शनल, तो वो जो उसका रोल है वो भी प्ले कर रहे होते हैं. नाउ यू शुड बी क्लियर व्हाट इज लाइन एंड स्टाफ एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम. और इट हैज डू समथिंग विद द अथॉरिटी. और HR डिपार्टमेंट बाय वर्चू ऑफ द लीगल अथॉरिटी जिसको कहते हैं उसके तहत तो दे आर प्लेइंग दी सर्विसेज रोल, स्टाफ रोल, लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं और एक्ट भी करते हैं लाइन फंक्शन पार्ट भी, लाइन अथॉरिटी को भी. सो चेयर अप नाउ, व्हाई दिस कैट फेस. आगे देखते हैं, बड़ी अच्छी चीज आपके लिए. या यू मस्ट बी हैप्पी, लेट्स स्टॉप इट हियर. लेकिन इस लेक्चर के साथ आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, उनको अच्छी तरह पढ़िए जरा. तो अगर चांस मिले तो कोई मैनेजमेंट की बेसिक बुक लेके उसको भी पढ़ लें, उसके जो बेसिक चैप्टर्स डीलिंग विद द लाइन एंड स्टाफ, तो आई थिंक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. फिर भी समझ ना आए एज यूजुअल, तो हमें पूछिए, बात कीजिए, मेल कीजिए पश्चिम यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव, वो आपको जवाब भी देंगे इसका. लेकिन जाने से पहले जरा बताइए तो सही कि ये स्लाइड आपने कहां देखी. देखें ये सारी चीजें बिल्ड हो रही हैं एक दूसरे पे, तो अनलेस वी कीप ट्रैक ऑफ दोज थिंग फिर बात नहीं बनेगी. तो जरा सोचिए कहां से आपने इसको देखा था और किस चीज को ये डिस्कस करी थी स्लाइड. हाँ, इट वॉज इन लेक्चर नंबर 5. और लेक्चर नंबर 5 में क्या था, वहां पे हमने जब ग्रुप और टीम को डिस्कस कर रहे थे तो उस हवाले से एक स्लाइड वहां पे दिखाई थी, और दैट वॉज बेसिकली हाउ टू टर्न इंडिविजुअल इनटू टीम मेंबर. कुछ याद आया? चले फिर ये बताइए कि व्हाट इज दिस सिलेक्शन, व्हाट ट्रेनिंग हैज टू डू एंड व्हाट इज रिवार्ड हियर. तो जब हम टीम का डिस्कस कर रहे थे तो वी डिस्कस दैट टू बिल्ड ए नाइस टीम, अ गुड इफेक्टिव टीम, यू हैव टू सिलेक्ट द राइट पीपल फॉर दैट पर्टिकुलर टीम. खाली सिलेक्शन से बात नहीं बनेगी, देन यू हैव टू ट्रेन देम इन अ वे दैट दे कैन डेवलप द कोऑर्डिनेशन, और एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे उन्होंने काम करना है इन ए पर्टिकुलर एनवायरमेंट. ये भी ठीक है. तो रिवार्ड से क्या तल्लक है? रिवार्ड से यह तल्लक है कि देन यू हैव टू अटैच देयर परफॉर्मेंस विद सम इंसेंटिव और सम रिवार्ड, सो दैट देयर मोटिवेशन लेवल शुड स्टे ऑलवेज हाई. कि इफ विल डू दिस थिंग राइट विल गेट दिस बेनिफिट, विल गेट दिस रिवार्ड फ्रॉम हियर. सो दैट वॉज विद बेसिकली चैप्टर नंबर और लेक्चर नंबर 5 when we are talking about theme. तो अब आगे से अपने आप को तैयार रखिए, इस तरह के क्वेश्चन दरमियान में आएंगे. ये नहीं है कि सिर्फ पिछला लेक्चर, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले हम शुरू से ये कर रहे हैं कि when I come, I start new lecture, I try to go back one lecture back. And when I finish, I try to give you कि next lecture में हम क्या discuss करेंगे. लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा तो फिर ये होगा कि पिछला सारा भूल गए होंगे आप. Why not just take randomly something from some previous lecture and ask you? आपका भी टेस्ट हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट इसे कहते हैं, और अंदाजा भी हो जाएगा कि किसका फायदा क्या होता है. आगे चलते हैं. खाली तो कोई साइड नहीं देखी थी हमने. यस, बट ये कुछ याद आता है क्या था? ब्लॉक दिखाए थे. ह्यूमन, व्हाट वाज दैट? Then there were resources. Of course, next will be management, right? ये तीन ब्लॉक तो हमने किसी एक स्लाइड में आपको दिखाया था. ये तीनों मिलके आपका जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इसी के बारे में था. Yes, there was human resource management. ये किस चैप्टर में पढ़ा था हम, या किस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था? No, it was initially the first lecture. पहले लेक्चर के अंदर हमने जब ह्यूमन रिसोर्स को डिफाइन किया था तो ये ब्लॉक, ये स्लाइड आपको दिखाई. चलें एचआर को डिफाइन करके बताएं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या चीज है. दिस इज बेसिकली मैनेजिंग द पीपल, ह्यूमन मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट. दैट वाज इट. Just test for you, your self-assessment. इसके बाद तो आपको अब अंदाजा होने जाना चाहिए कि कितने पानी में आप लोग। तो ये मेमोराइजेशन से हट निकल आए थोड़ा सा, क्योंकि नाउ यू हैव सच एंड बिग बुक्स इन ईच सेमेस्टर, चार चार पांच पांच सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो अगले सेमेस्टर में तो नई किताब होगी। तो अब आपको इसको कंसीव करना, आइडियाज को, कंसेप्ट को समझना है, सो दैट यू शुड मूव फॉरवर्ड। ये तो आपका मेरा टेस्ट था कि कैसे आपको रिटेन किया कि नहीं आपने। लेकिन आगे क्या पढ़ना हमने आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर? अब आपने देखा होगा कि आपने, क्योंकि नाउ वी आर मोर टूवर्ड योर रेफरेंस और टेक्स्ट बुक, उसमें से पिक करके हम आगे चलेंगे चीजों को। आई थिंक इन मोस्टली सेकंड और थर्ड चैप्टर इज द लीगल एस्पेक्ट, अ लीगल कंटेंट ऑफ द एचआर डिसीजन। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ लेजिस्लेशन की रेफरेंस दिए होंगे, बट रिमेंबर इट दैट योर टैक्स इज रिटन बाई अमेरिकन और ब्रिटिश के किसी ऑथर की लिखी हुई है, और इसमें जो लीगल कॉन्टेक्स्ट में वो सारा जो रेफरेंस दे रहे हैं आपको, सारे रूल रेगुलेशन बता रहे हैं, वो उन कंट्रीज का बता रहे हैं। वट विल ट्राई हेयर, इसमें आपने टर्म मुख्तलिफ आपको नजर आएंगी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ईओ के नाम से, अफर्मेटिव एक्शन, सिविल राइट एंड सो ऑन। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक इसकी कॉन्सेप्ट, बेसिक थीम बताऊं कि ये लीगल एस्पेक्ट क्या होते हैं, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या चीज है, अफर्मेटिव एक्शन क्या है, होते हैं, और इसकी क्या रिलेशनशिप है रेफरेंस टू अवर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट हर सब्जेक्ट। बट नॉट नेसेसरी दैट वी शुड मेमोराइज ऑल दोज रूल्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आप उनको पढ़िए जरूर कि उनकी कौन सा लॉ किस चीज के लिए बनाए, चैप्टर फोर क्या है, चैप्टर फाइव थिंग क्या है। लेकिन हमारे लिए, आपके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए उससे इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिकली टू कंसीव द कॉन्सेप्ट कि इसका रोल क्या है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी रेफरेंस टू ह्यूमन रिसोर्स, हु आर द स्टेक होल्डर्स, जो डायरेक्ट जो इफेक्टिव हैं इस तरह की रूल रेगुलेशन से, और इसके अंदर एथिक्स पार्ट क्या है, एंड हाउ we have to use this for our HR functions here. बहुत सारी figures, events, years बताए जाएंगे, you are not supposed to memorize all of them. लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये affirmative actions क्या चीज थी, क्यों ऐसे हुआ, ये discrimination का जो act बने थे क्यों बने हैं, ये basic किसको deal कर रहे हैं, ये harassment के जो rule regulations के लिए बनाए गए क्यों बनाए गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में आई ट्राई टू कवर दीज एस्पेक्ट, लेकिन अगेन रिमेंबर दैट दिस इज दिस बेसिकली दिस योर टेक्स्ट बुक इज रिटन और इट इज अमेरिकन और ब्रिटिश बुक, तो उनके रूल रेगुलेशन का रेफरेंस के तौर पे यहां कोट किया गया है। हमने सिर्फ इसका इसे आइडिया कंसीव करना है ताकि रियलिटी में, प्रैक्टिकल में इस तरह के इशू हमें भी फेस कर सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं, उसको कैसे किस तरह टैकल करना है हमें। इसको पढ़िए जरूर, बड़ी काम की चीज है, आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। सो लेट्स स्टॉप इट हियर, वर्क हार्ड, सी यू अगेन, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।